श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 41। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवतम में 2.9.31 इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवद गीता हमें ज्ञान का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान यानी ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है, अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। तो भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये काम को कैसे दूर किया जा सकता है। तो कल के श्लोक में भगवान ने बताया कि इंद्रिय मन और बुद्धि पर ये काम सवार होता है, ये इसके स्थान है। तो ये जान लेने के बाद कि काम इन तीनों जगह से जीव को मोहित कर रहा है, आज भगवान बता रहे हैं इसलिए क्या करो। तस्मात, इसलिए इंद्रियों से प्रारंभ करके, तो इंद्रिय मन और बुद्धि इन तीनों में से सबसे अधिक स्थूल चीज क्या है? बोली स्थूल। इंद्रिय मन और बुद्धि में से सबसे स्थूल क्या है? इंद्रिय। और सूक्ष्म बुद्धि, मन और बुद्धि। तो इसीलिए इंद्रियाण्यादौ, इंद्रियों से शुरू करो, क्योंकि स्थूल चीज को से प्रारंभ करना आसान है, सूक्ष्म चीज के वनस्पत। स्थूल चीज को समझना आसान है ना सूक्ष्म से, जैसे विज्ञान के अंदर रसायन विज्ञान और ये फिजिक्स, तो फिजिक्स ज़्यादातर एनर्जी शक्ति से डील करता है और रसायन शास्त्र विशेष रूप से स्थूल रसायनों से संबंधित है, इसलिए केमिस्ट्री जनरली फिजिक्स से आसान होती है, इसको समझना आसान है स्थूल चीज़ों को। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं इंद्रियों से प्रारंभ करके तुम इस काम को वश में करना प्रारंभ करो, और उस काम के फिर आगे और गुण बता रहे हैं कि पापमानम प्रजहीयेनम, इस पाप के कारक को हरो जो क्या करता है ज्ञान और विज्ञान का नाश करता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इन दो शब्दों का विश्लेषण कर रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान क्या है। तो ज्ञान है, बहुत प्रकार का ज्ञान है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अनेक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन यहां जिस ज्ञान की बात कर रही है, जिसको वास्तव में ज्ञान कहा गया है, विद्या, परा विद्या कहा गया है, अज्ञानता से अलग, अविद्या से अलग, वो है चेतन और अचेतन, आत्मा और शरीर में भेद समझना, इसे ज्ञान कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं, इसे ज्ञान कहा गया है। और मैं आत्मा हूं और भगवान का अंश हूं और उनका नित्य दास हूं, इसलिए मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये भी ज्ञान है। तो ज्ञान है शरीर और आत्मा में भेद समझना, और विज्ञान है खुद का, भगवान का और इस संसार का संबंध समझते हुए उस संबंध के अनुसार कार्य करना, उसे विज्ञान कहते हैं, ज्ञान और विज्ञान। तो ये जो विज्ञान है ये आत्म साक्षात्कार किया हुआ ज्ञान, तो केवल सैद्धांतिक रूप में ये समझना कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, जीव के लिए काफी नहीं है, जीवन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है मात्र ये समझ लेना कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं। तो भारत में या पूरे संसार में अनेक लोग तो ये जानते हैं, मानते हैं कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, लेकिन फिर भी हम देखें तो ये जान लेने के बाद भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, कोई विशेष फर्क नहीं है। हम यहाँ बाहर जाएंगे पूछेंगे क्या आप जानते हैं आत्मा है, हाँ हम जानते हैं आत्मा, लेकिन व्यावहारिक रूप से वो उसका क्या उपयोग कर रहे हैं ये जानने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, कुछ नहीं। तो जब ज्ञान को जान लेने के बाद उस स्तर पे कार्य किया जाता है तब वह ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित होता है, आत्म साक्षात्कार में परिवर्तित होता है। कि हम आत्मा है ये आत्म साक्षात्कार कैसे आएगा, आत्मा के स्तर पे काम करने से आत्म साक्षात्कार आएगा, केवल जान लेने से आत्म साक्षात्कार नहीं आएगा। इसलिए भगवान बताते हैं ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्याम यशेषतः, ज्ञान और विज्ञान दोनों सुनो। तो इसलिए एक रहस्य है, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता को बताए हैं कि एक रहस्यात्मक ज्ञान है। तो रहस्य हम किस चीज को कहते हैं, जो साधारण रूप से समझा नहीं जा सकता उसे रहस्य कहते हैं। तो एक दृष्टि देखा जाए तो बड़ा ये सीधा साधा है, ठीक है हम जीव हैं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं, लेकिन रहस्य है क्योंकि जब तक इस ज्ञान का साक्षात्कार ना हो, जब से इससे इससे हृदय परिवर्तन ना हो, तब तक ये ज्ञान किस काम का। और ये साक्षात्कार करना रहस्य है, तत्त्वतः जानना इसको रहस्य है। तो जो हमारी ये भागवत फिलॉसफी है, दर्शन है, ये प्रभुपाद बोलते थे इट इज नॉट एन आर्म चेयर फिलॉसफी, ये केवल ऐसा नहीं है बस थ्योरी के लिए ये एक दर्शन है, पुस्तक लिखने के लिए, नोबेल प्राइज प्राप्त करने के लिए, बस एक लिखने मात्र के लिए है, ऐसा नहीं कि वो एक फिलोसोफर ने ऐसा बोला है, उसने ऐसा बोला है। जैसे आजकल लोग विभिन्न ज्ञान के अंगों को प्राप्त करते हैं मात्र जान लेने के लिए, वो मात्र जान ज्ञान प्राप्त करने से एक प्रकार का सुख मिलता है। ओ नाउ वी ऑल्सो नो दिस, हमारे नॉलेज बैंक में वृद्धि हो गई। अभी बंदर की आयु कितनी है और बंदर कहाँ कहाँ रहता है, कैसे रहता है, क्यों रहता है, वो अभी हमने जान लिया, स्टडी किया मंकीज के ऊपर। ओ अभी हमारा नॉलेज बैंक बढ़ गया, अभी हमारे ज्ञान की जो लाइब्रेरी है वो बढ़ गई, हमारी लाइब्रेरी के अंदर ज़्यादा बुक हो गई, ज़्यादा हमको ज्ञान है, अभी ज़्यादा हमको पता है। तो इसे बोलते हैं नोइंग फॉर द सेक ऑफ नोइंग, जानने के लिए जानना, जानना ही उद्देश्य है, मात्र जान लेना ही उद्देश्य है। यानी कि उन्हें मात्र जान लेने से एक प्रकार का सुख मिलता है, इसलिए वो इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। लेकिन उस अध्ययन करने से तत्वतः ना तो उस व्यक्ति को कोई लाभ होता है, ना तो बंदर को कोई लाभ होता है, ना तो किसी अन्य व्यक्ति को कोई लाभ होता है। होता है? अगर आप नहीं जानते कि बंदर कैसे रहता है, क्या रहता है, तो उससे आपको कोई हानि हो रही है, कोई कमी है? नहीं। और बंदर को आपके जान लेने से कोई लाभ होता है? नहीं, बंदर तो जी रहा है, पहले भी जी रहा, आप भी जी रहा है। किसी अन्य व्यक्ति को कोई लाभ होता है? कुछ नहीं होता। तो इसे कहते हैं नोइंग फॉर द सेक ऑफ नोइंग। तो आजकल ऐसा बहुत सारा ज्ञान है जो लोग इस प्रकार से लेते हैं, ऐसे ही बहुत प्रकार के दर्शन हैं, दर्शन फिलॉसफीज। तो फिलॉसफी का वास्तविक अर्थ है लव ऑफ नॉलेज, ज्ञान के लिए नॉलेज। लेकिन आर्मचेयर फिलॉसफी मतलब जैसे सिगमंड फ्रॉयड तो एक फिलॉसफर है, एक साइकोलॉजिस्ट भी है, तो उसने अपनी फिलॉसफी रखी। ऐसे बहुत सारे फिलॉसफर हैं और अंततः वो फिलॉसफर जैसे सिगमंड फ्रॉयड तो सिगार और फिर उसका कैंसर हुआ और फिर मर गया। बस फिलॉसफी दिया लेकिन उसका व्यक्तिगत जीवन में कुछ उपयोग नहीं कर पाए, फिर भी वही जीवन चल रहा है जैसे दूसरे लोगों का चल रहा है। फिलॉसफी जानने और ना जानने से कोई अर्थ नहीं। तो उसकी फिलॉसफी है कि खूब ये जो मैथुन सुख है इसको रोकने से, रेस्ट्रिक्ट करने से जीव के अंदर, वो मन के अंदर विकृतियां उत्पन्न होती हैं, पागलपन होता है, तो इसलिए इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। तो वो तो जानवर करते ही हैं, तो उसमें फिलॉसफी क्या जरूरत है। तो इसे कहते हैं आर्म चेयर फिलॉसफी, बस बैठे बैठे कुछ लिखना है, उसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। तो भगवद्गीता का ज्ञान ऐसा नहीं है। भगवद्गीता का ज्ञान, प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज मीन टू बिंग रिवॉल्यूशन इन द लाइफ्स ऑफ, भागवतम में कहा गया विप्लव, ये लोगों के जीवन में क्रांति लाने के लिए है। विप्लव भागवतम में कहा गया है, ये जो भागवत विज्ञान है ये लोगों के जीवन में क्रांति लाने के लिए है, ये हृदय का परिवर्तन करने के लिए है। तो इसलिए हम देखते हैं जो भी लोग विनम्र होकर के इस ज्ञान को सुनते हैं धीरे धीरे साधुओं के, भक्तों के मुख से, उनका जीवन परिवर्तित होने लगता है। और ये परिवर्तन सब लोग अनुभव कर सकते हैं, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, वो स्वयं सब अनुभव कर सकते हैं कि ये अभी तमोगुण रजोगुण से निकल करके सत्वगुण में स्थित हो रहा है। तो ये परिणाम होता है भगवत विज्ञान का। तो ये जो ज्ञान और विज्ञान है, भागवतम के जो श्लोक जो प्रभुपाद जी ने यहां उद्धृत किया है, ज्ञानम परम गुह्यम ने यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। तो भगवान कह रहे हैं ये जो ज्ञान और विज्ञान है ये मैं तुम्हें समझाऊंगा। ब्रह्मा को कह रहे हैं, ब्रह्मा जी क्रिएशन से पहले, सृष्टि से पहले भगवान से प्रश्न किए, चार प्रश्न किए, उनमें से एक प्रश्न, उन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले भूमिका रूप में भगवान इस श्लोक को कह रहे हैं कि तुम सुनो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, सुनो, गदितम मया, मेरे द्वारा जिस प्रकार ये ज्ञान और विज्ञान समझाया जा रहा है उस प्रकार से तुम इसको ग्रहण करो। यानी कि ये ज्ञान और विज्ञान को कौन समझा सकता है, यानी कि वो कि हम आत्मा हैं और हमारा नित्य कर्म क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, उसमें हमको स्थापित करने के विषय में ज्ञान कौन दे सकता है? भगवान ही दे सकते हैं। एक बद्ध जीव स्वयं कभी भी ज्ञान और विज्ञान नहीं दे सकता, नहीं प्राप्त कर सकता संपूर्ण रूप में। परम सत्य के विषय में कुछ हद तक जानकारी आरोहपंथी या इंपिरिसिस्ट फिलोसोफर या जिसे हिंदी में कहेंगे जो एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, प्रयोगों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वे लोग परम सत्य के विषय में खोज करते हैं तो हम देखते हैं हमारे विद्यालयों में कहीं कहीं पर, ज्यादा नहीं है, कहीं कहीं बहुत कहीं हाई लेवल पे जाकर के ये अध्ययन होता है, प्रयास होता है कि ये संसार का उद्गम क्या है, जीवन का स्रोत क्या है, तो परम सत्य को जानने की खोज है। तो इंद्रियों के द्वारा जो ये ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास है ये कभी भी संपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। विज्ञान की तो बात ही छोड़ दें, रियलाइजेशन की तो बात ही छोड़ दें। मैक्सिमम ब्रह्म ज्योति तक का ज्ञान हमें मिल सकता है आरोह पंथ से, जो मेंटल स्पेक्युलेटर्स हैं, जो कल्पना वाले व्यक्ति हैं, कल्पना करके अपनी इंद्रियों से अपनी बुद्धि से विवेचन करके परम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, वो अधिकतम किस स्तर तक पहुंच सकते हैं? केवल ब्रह्म ज्योति तक को जान सकते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्योति परम सत्य को का परम ज्ञान नहीं है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि परम सत्य है कि तीन स्तर है, उसमें सबसे निम्नतम स्तर है ब्रह्म ज्योति का स्तर, सबसे निम्नतम स्तर है। तो इससे ब्रह्म ज्योति को जानना पूर्ण रूप में परम सत्य को जानना नहीं है, ये तो उसकी आंशिक जानकारी है। पूर्ण रूप में भगवान को जानने का मतलब है, परम सत्य को जानने का मतलब है जो जन्मादियस्यतः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादियस्यतः, श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में जिसका विवरण है कि जिससे सब चीज का जन्म हुआ है, जिससे सब चीज, जो सब चीज का आदि है, जन्मादि अस्यतः, जिस सब चीज का जिससे उद्गम हुआ है, ऐसे भगवान वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम एब्सोल्यूट ट्रुथ, सत्यम परम धीमहि, मैं उनका ध्यान करता हूं। तो जब तक कोई व्यक्ति परम सत्य की परम स्तर, परम सत्य के परम स्तर भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः नहीं समझ लेता, तब तक उसका ज्ञान संपूर्ण नहीं कहलाया जा सकता। और ये जो ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान, भगवान भगवत तत्व विज्ञान, इसका एकमात्र, इसको जानने का उपाय है गृहाण गदितम मया। जब ये भगवान द्वारा बताया जाएगा तभी हमको पता लगेगा कि वास्तव में भगवान या परम सत्य कौन है संपूर्ण, नहीं तो नहीं पता लग सकते। अथापि ते पदाम्बुजं द्वयम् प्रसाद लेश अनुग्रहीत एव हि जानादि तत्त्वं भगवन महिम्नो न चापि अन्य चिरं विचन्वन्। तो एक अन्य श्लोक में कहा गया है कि हे भगवान, जो आपके चरण कमल लेश मात्र प्रसाद ग्रहण करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं, वे ही आपको जानादि तत्त्वम शब्दम महिम्नो, वही आपकी महिमा को तत्त्वतः जान पाते हैं। न चापि अन्य, अन्य लोग नहीं, चाहे भले ही चिरन विचन्वन, बहुत लंबे समय तक वो अध्ययन करें, स्टडी करें, शास्त्रों को भी पढ़ें या वैज्ञानिक खोज करें, कई कई सालों तक भी करें, तो भी वो आपको, आपकी महिमा को तत्त्वतः नहीं समझ सकते। लेकिन जिस व्यक्ति को लेश मात्र भी भगवान की कृपा प्राप्त हुई है वो समझ सकता है। तो यहां पर अर्जुन को जब भगवान भगवद गीता बताना शुरू किए तो यही क्वालिफिकेशन बताए, स एवायम मया त्यद्या योगम प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तद उत्तमम। कि हे अर्जुन, ये रहस्य मैं तुम्हें सुना रहा हूं क्योंकि तुम इस रहस्य को समझने के योग्य हो। और योग्यता क्या है अर्जुन, भगवान क्या योग्यता बताए, भक्तोसी में सखा चेति, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो इसलिए तुम इस रहस्य को समझने के योग्य हो। तो अनेक अनेक जगह पर शास्त्रों में और भगवद्गीता में विशेष रूप से बताया गया, भक्त्यामाम अभिजानाति यावनश्च अस्मि तत्त्वतः, तत्त्वतः मुझे भक्ति से ही जाना जा सकता है। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ, वेदों के द्वारा दुर्लभ है और भक्ति के द्वारा सरल है भगवान को समझना। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी भी कहते हैं। तो स्पष्ट है कि भगवान को समझना यानी ज्ञान, वास्तविक ज्ञान को समझना और उसका साक्षात्कार करना केवल भक्ति से ही संभव है। और भक्ति का प्रारंभ होता है श्रवणादि शुद्ध चित्त कराउदय, श्रवण से, शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण करने से भक्ति का प्रारंभ होता है। और भागवत में बताया गया है कि कैसे कैसे ये तत्व ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि नाम वेत ग्राह्यम इंद्रिया सेवन मुख्य जीवादौ स्वयं एव स्फूर्ति, ये भागवत में नहीं है लेकिन इसमें बताया गया है कि भगवान का नाम रूप गुण लीला नहीं समझ सकते हैं लेकिन जब सेवन मुख होकर अपनी जीवा को, जीवा से प्रारंभ करके अपने को भगवान की सेवा में लगाते हैं तब भगवान स्वयं अपने को प्रकाशित करते हैं। इसी को भागवत में बताया गया, शिण्वताम सुकृता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम नष्ट प्रायेश भद्रेशु नित्यम भागवतम सेवया भगवती मद भक्ति, नित्य भक्ति भगवती नैष्ठिकी तथा रजस्तमो भावा काम लोभा दृष्टये चेते एतरनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो ये सीक्वेंस बताया है कि भगवत तत्व विज्ञान कैसे प्राप्त होता है, श्रवण नैष्ठिकी भक्ति, भागवत सेवा नैष्ठिकी भक्ति, रजो तमोगुण कम होता है सत्वगुण में स्थित होते हैं और फिर ये भगवत तत्व विज्ञानम प्राप्त होता है और फिर उसके बाद में आगे चल करके सब कर्मों का फल नष्ट होता है, सभी संशय नष्ट होते हैं और फिर ईश्वर का दर्शन होता है। तो ये विधि के अनुसार ही ज्ञान और विज्ञान को जाना जा सकता है। तो वर्तमान में तो ये जो ज्ञान और विज्ञान है ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई बाह्य ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करना है, ये ज्ञान विज्ञान स्वाभाविक रूप से हम सबके हृदय में है, हर जीव के हृदय में है, ये कोई नई चीज नहीं है जो हमको प्राप्त करनी है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करहुदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नये श्रवण आदि शुद्ध चित्त करहुदय। ये जो कृष्ण प्रेम है, ज्ञान और विज्ञान की पराकाष्ठा क्या है, कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम क्या है, कृष्ण इंद्र प्रीति वांछा तहे कहे प्रेम आत्म इंद्र प्रीति इच्छा धरे कामना, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की उत्कंठा इसे कहते हैं कृष्ण प्रेम और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा इसे कहते हैं काम। तो यही काम का यहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये काम की परिभाषा क्या है, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा इसे कहते हैं काम। और यही काम ज्ञान विज्ञान नाशनम, और ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा क्या है, कृष्ण प्रेम। तो यानी काम और कृष्ण प्रेम ये दोनों विरोधी हैं। विरोधी है मतलब कैसे, कि काम की वजह से ये जो कृष्ण प्रेम है सब जीवों के हृदय में, जो ज्ञान और विज्ञान है वो ढक गया है। आवृतम अज्ञान है ना, आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती जंतव, अज्ञान के द्वारा ये जो ज्ञान है उसको ढक लिया गया है वर्तमान में। तो यह ज्ञान क्या है, ये काम वासना है, ये नाश कर देता है ज्ञान और विज्ञान का। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्रयापित चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य, जो काम वासना से प्रेरित होते हैं, भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त हैं, उनके हृदय में भक्ति करने की शुद्ध इच्छा कभी उत्पन्न नहीं होती है। तो प्रभुपाद जी यहां बोलते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, ये ज्ञान का नाश करता है काम, और आत्म साक्षात्कार करने की इच्छा को नाश कर देता है। अभी देखिए कितने सारे विद्यार्थियां खड़े हुए थे, बारिश की वजह से रुके हुए थे, लेकिन उनके अंदर वो इच्छा नहीं है, केवल उनके अंदर नहीं, मेजोरिटी ऑफ पीपल, ज्यादातर लोगों के अंदर कोई इच्छा नहीं है कि भगवान के विषय में समझें, आत्म साक्षात्कार के विषय में तनिक भी जिज्ञासा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काम वासना के द्वारा लिप्त, काम वासना में लिप्त है। भोग ऐश्वर्य की अनेक अनेक इच्छाएं जिसके हृदय में हैं, पिशाचिनी के रूप में हृदय में जब डोलती हैं, भोग करने की इच्छाएं, बहुत बड़ा बड़ा भोग, बड़ा बड़ा आदमी बनना, सोसाइटी में बड़ा स्थान ग्रहण करना, अमेरिका जाना, खूब एंजॉय करना, ये सब, और सभी काम इच्छाओं में सबसे प्रमुख मैथुन इच्छा, जब तक ये हृदय में वास रखती है तब तक आत्म साक्षात्कार के विषय में इच्छा ही जागृत नहीं होती है हृदय में। इसलिए कहा गया विज्ञान नाशनम, ये विज्ञान को नाश कर देता है। और इसीलिए आदमी क्या बन जाता है, तो ज्ञान भी नाश हो गया, विज्ञान भी नाश हो गया, तो आदमी क्या बन गया, जानवर, पशुतुल्य बन गया। तो भगवान कह रहे हैं यहां पर कि तुम प्रारंभ से ही इस ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले काम को वश में करो, इसका दमन करो प्रारंभ से ही। प्रारंभ से ही मतलब इस बच्चे की उम्र से ही। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञा, कौमारम स्थिति से ही, जब से बच्चा होश संभालता है, एक्चुअली बच्चा होश संभालना नहीं, बच्चे के इस पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले से ही बच्चे को इस काम वासना से निकालने का प्रशिक्षण शुरू हो जाना चाहिए। कैसे? जन्म से पहले कैसे? गर्भदान संस्कार के द्वारा। ये वैदिक संस्कृति कि बच्चे का प्रशिक्षण, बच्चे के जन्म, क्योंकि वास्तविक जन्म क्या है, वास्तविक जन्म नहीं है कि जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है तो वो जन्म, वेदों के द्वारा वो जन्म नहीं माना जाता, यह अज्ञानता है। जन्म है गर्भदान, जब प्रेगनेंसी होती है उस समय से, जब गर्भ को धारण किया जाता है जिस दिन से, वो दिन जन्म है जीव का। तो वैदिक विधि है जिसके द्वारा, गर्भदान संस्कार के द्वारा ऐसी आत्मा को बुलाया जाता है जो आत्म साक्षात्कार करने के लिए और प्रशिक्षण और संस्कारों के लिए योग्य हो। तो यदि गर्भदान संस्कार नहीं किया जाए तो फिर अन्य संस्कार भी नहीं हो सकते, वैदिक विधि के द्वारा, पंचरात्र की विधि के द्वारा हो सकते हैं जैसा इस्कॉन में हो रहा है, लेकिन वैदिक विधि के अनुसार जैसे द्विज, सेकंड बर्थ, तो दूसरी बर्थ कब होती है, दूसरा जन्म कब होता है, उपनयन संस्कार के द्वारा। तो वर्तमान में ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य जो उच्च कुल के माने जाते हैं उनमें ये उपनयन संस्कार होता है, लेकिन शास्त्रों के द्वारा यदि गर्भदान संस्कार नहीं हुआ है तो उपनयन संस्कार व्यर्थ है, उसका कोई औचित्य नहीं। यदि गर्भदान संस्कार नहीं हुआ है तो उपनयन संस्कार नहीं हो सकता है, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है यदि गर्भदान संस्कार नहीं है। इसीलिए कहा गया है कलौ शूद्र संभवः, कलयुग में सभी शूद्र के स्तर पर, लेकिन पंचरात्रि की विधि के द्वारा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो चंडाल भी क्यों ना हो, चंडाल परिवार में भी क्यों जन्म न लिया हो, लेकिन पंचरात्रि की विधि द्वारा, दीक्षा विधान है ना, दीक्षा के विधान के द्वारा, जैसे कांसे को पारे के संपर्क में लाने से स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है, उसी प्रकार पंचरात्रि की विधि से दीक्षा विधान के द्वारा किसी भी व्यक्ति को, अगर वो योग्य है, कम से कम उस इनिशिएशन के योग्य है, तो उसकी भी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, तो यदि वो इस दीक्षा को लेता है तो वो वैष्णव बन सकता है, ब्राह्मण से भी अतीत हो सकता है। तो कलयुग में तो यही विधि संभव है, वैदिक विधि संभव नहीं है। कोई गर्भदान संस्कार कहाँ है? कॉन्ट्रसेप्शन है, अत्यंत पापमय जीवन। तो इस प्रकार से बच्चे का प्रशिक्षण गर्भदान संस्कार से प्रारंभ हो जाता है और फिर अनेक अनेक संस्कार होते हैं जिसके द्वारा संस्कारात भवे द्विजा, और द्विजा बनता है और आगे चलता है। तो भगवान यह कह रहे हैं कि बचपन से ही इस काम को वश में करने के लिए तुम प्रयास करो। तो जो एजुकेशन होनी चाहिए जब बच्चा, उपनयन संस्कार क्या होता है, वो जो सेक्रेट थ्रेड धारण करते हैं वो किसका, किसको सिंबलाइज करता है, कि बच्चा आज से शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल जा रहा है। लेकिन आज क्या होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है, वो भेजते हैं और फिर वापस बुला लेते हैं। ऐसे ही संन्यास की भी एक औपचारिकता होती है। जब शादी होती है तो विवाह से पहले वर के कान में कहा जाता है, वर को कहा जाता है, ये संसार व्यर्थ है, ये सब संबंध व्यर्थ हैं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं और ये सब व्यर्थ है। तो वर जो है वो घर छोड़ के चला जाता है। लेकिन थोड़े ही समय बाद में एक दूसरा व्यक्ति आकर के उसको बोलता है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी को निभाना जरूरी है, ये है वो है, वापिस आ जाता है। आज सब औपचारिकता बन के रह गया है। इस तरीके से उपनयन संस्कार के अंदर भी बस एक थोड़े समय के लिए बच्चा जाता है कहीं और फिर वापिस आ जाता है। तो ये सब वैदिक संस्कृति का हनन हुआ है, इसका परिणाम है। लेकिन वास्तव में होना चाहिए कि बच्चे को एजुकेशन, कौमारम आचरेत प्राज्ञा, वास्तव में एजुकेशन क्या है, शिक्षण क्या है, यही शिक्षण है, ज्ञान और विज्ञान देना, न कि अविद्या देना। जो आजकल का प्रशिक्षण है वो क्या है, आसुरी ज्ञान है, आसुरी शिक्षण है, वो वैदिक शिक्षण वास्तविक शिक्षण नहीं है, वो ज्ञान और विज्ञान नहीं देता है। जीवेर कौरय गधा जड़ विद्या जतो माया रैभव, जीवेर कौरय गधा, जो जड़ विद्या है जो आजकल विद्यालयों में सिखाई जा रही है वो ज्ञान और विज्ञान नहीं देती है, वो जड़ विद्या दी जाती है, केवल शरीर संबंधी विज्ञान दिया जाता है, शरीर को हष्ट पुष्ट रखो और खूब एंजॉय करो, यानी क्या, और काम वासना में प्रेरित किया जाता है, काम और लोभ, इसका प्रशिक्षण है आज का प्रशिक्षण। कलयुग में विद्यालयों में प्रशिक्षण किस चीज का है, काम और लोभ का फर्स्ट क्लास प्रशिक्षण है। कैसे व्यक्ति अधिक से अधिक कामुक हो सके और कैसे व्यक्ति अधिक से अधिक लोभी बन सके। तो बचपन से ही टीवी और मीडिया के माध्यम से उसको, उसकी इंद्रियों को हर क्षण एजिटेट कराना उसको सिखाया जाता है। च्युइंगम्स, चॉकलेट्स, तो बच्चे को प्रलोभित हर समय उसकी इंद्रियों को टिटलेट करना सिखाया जाता है। और फिर टीवी, उसके माध्यम से हर समय कुछ ना कुछ अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा मीन्स इंद्रियों को जो अच्छा लगे। तो ऐसे हर समय प्रस्तुत इंद्रिय प्रलोभन से व्यक्ति क्या हो जाता है, कामुक बन जाता है। उसकी ऐसे वातावरण में रहने से वो कामुक बन जाता है। कामुक मतलब फिर वो व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। दुष्पूरेण अनलेन च, ये काम वासना का गुण है, काम वासना कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। जितना भी आप उसको पूरा करने का प्रयास कर लीजिए वो संतुष्ट नहीं हो सकता, वो अग्नि में ईंधन डालने के समान है। तो इसलिए आज की स्थिति क्या है, व्यक्तियों के कामुक होने की वजह से कोई संतुष्ट नहीं है, जितना भी मिल जाए उतने में भी कोई संतुष्ट नहीं है, हवस है और। क्यों? क्योंकि इनकी काम वासनाओं को प्रेरित किया जा रहा है। ये सब एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री किस पर निर्भर है, इसी सिद्धांत पर निर्भर है कि यदि रजोगुण को बढ़ाया जाएगा, काम वासना को बढ़ाया जाएगा, तो लोगों में असंतुष्टि फैलेगी, उनको और अधिक और अधिक और अधिक जो उनके लिए आवश्यक नहीं है, जो उनके लिए हानिकारक है, ऐसी चीजों को लेने के लिए भी वो उत्साही हो जाएंगे। इसलिए आज हम देखते हैं तो लोग कुछ भी खरीदने के लिए चले जाते हैं मार्केट में, भले ही वो उनके लिए हानिकारक क्यों ना हो। करेक्ट, सोचते नहीं है क्योंकि काम वासना से प्रेरित है। तो ये ऐसी काम वासना है, तो शिक्षण होना चाहिए कि कैसे इंद्रिय संयमन करके इस काम वासना को प्रकट ना होने दिया जाए। यदि बचपन से ही ट्रेनिंग मिलेगा तो ये काम वासना जो है वो और अधिक जगेगी नहीं। इसलिए ध्रुव प्रहलाद महाराज कहते हैं बचपन से ही प्रशिक्षण शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन आजकल तो, अभी हम गए थे एक व्यक्ति के पास, 60 साल है उनकी उम्र, रिटायर्ड हो गए। हमने बोला भगवद गीता पढ़ी, बोले अभी मैं समय कम हुआ है भगवद गीता पढ़ने का। तो कहां तो कौमारम आचरित प्रज्ञा, और कहां बुढ़ा होने पर भी उनको प्रज्ञा नहीं है, बुद्धि नहीं है, अभी भी भगवद गीता पढ़ने की बुद्धि नहीं है। तो कितना पतन हुआ है। तो उनकी काम वासना क्या है, तो उसका बताया है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके अंदर चिंताम अपरिमेयान्ते प्रलयांतम, प्रलय के समय तक, मृत्यु के समय तक उनके हृदय में अनेक अनेक चिंताओं से वो ग्रस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि काम वासनाएं उन्होंने पूरे जीवन भर कल्टिवेट की है, पूरा जीवन तो काम को ही पनपाया है। तो अंत समय तक भी, मरने पर भी, फिर डॉक्टर से बोलते हैं डॉक्टर साहब और ये 2 साल दे दो, मेरी थोड़ी इच्छा भी बाकी रह गई पूरा करने के लिए। उसको नहीं पता कि प्रकृति के द्वारा अरेंजमेंट किया गया है कि इसको एक अन्य योनि दी जाएगी जिसमें वो अपनी इच्छाओं को और आगे पूरा करने का प्रयास करेगा और ऐसे ही चलासला योनि में जाएगा। तो इसलिए बचपन से इसको कंट्रोल में करने का प्रयास है। तो अभी वो प्रयास क्या है, काम वासना को हृदय से निकालना या उस पर वश करने का तरीका क्या है? तो वो तरीका है, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इंद्रियों को संयमित करने का उपाय भगवान श्री कृष्ण बताए हैं कि उन सभी को मुझ में, मुझसे संबंधित करके उनको नियमित करो। तो 3 स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं जहां पर काम बैठा है, कौन कौन से? इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो तीनों को भगवान की सेवा में लगा दो तो काम को वहां बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी। जैसे ग्लास में यदि कोई चीज आप भर दें, रेत भर दें पूरी फुल, अभी उसके ऊपर कुछ और डालेंगे आप तो वो उसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ग्लास पूरा भरा हुआ है। तो उसी प्रकार से यदि हम अपने इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को पूरी तरीके से कृष्णमय बना देंगे, कृष्ण के विचारों से, कृष्ण की सेवा से भर देंगे, तो उनको अन्यत्र लगने की संभावना ही नहीं रहेगी। ये तरीका है, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत परा, उन्हें पूरी तरीके से भगवान की सेवा में नियोजित कर दो। इसका ज्वलंत उदाहरण है महाराज अम्बरीश। सबई मना कृष्ण पदार बिंदयो, मन को उन्होंने कृष्ण के चरणों का चिंतन करने में लगा दिया, हाथों को भगवान के मंदिर के मार्जन करने में लगा दिया, जिह्वा को गुणान वर्णनम, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने में, कानों को उनका गुणों का वर्णन सुनने में, नासिका को उनको अर्पित पुष्प सूंघने में, पैरों को उनके मंदिर जाने में, इस प्रकार से अपनी सभी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगा दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, वो परम संयमी बन गए। कैसे? तो एक दुर्वासा मुनि, महान मुनि थे, महान योगी थे, तपस्वी थे, तो अपेक्षा की जाती है कि योगीगण महान इंद्रियों को संयमन करने वाले होते हैं। तो वो महाराज अम्बरीश से झगड़ा मोल ले लिए। महाराज अम्बरीश की कोई गलती नहीं थी लेकिन फिर भी दुर्वासा मुनि अहंकारवश उनसे झगड़ा मोल ले लिए और बहुत गर्म हो गए, बहुत गुस्से हो गए। लेकिन अम्बरीश महाराज जो एक राजा थे, जो योगी नहीं थे, गृहस्थ थे, एक राजा थे, लेकिन भक्ति योग में प्रवृत्त होने के कारण वो इतने संयमी थे कि इतना सब होने पर भी उत्सुक नहीं हुए, उकसे नहीं, और अपने टॉलरेट किया, सहन किया, सब कुछ सहन किया विनम्रता से। जो भी कुछ दुर्वासा मुनि ने कहा, उन्होंने एक जिन उत्पन्न कर दिया दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, तो भी अम्बरीश महाराज ने कोई प्रतिशोध नहीं किया, शांति से बिल्कुल। तो इतनी शक्ति इनको प्राप्त हो गई संयमित करने की अपने को, नहीं तो संभव है कोई हमारा अपमान करे तो हम तो आग बबूला हो जाते हैं। है ना, कोई हमारा अपमान करे तो ईर्ष्या द्वेष से भर जाते हैं, गुस्से से क्रोध से भर जाते हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज को कुछ क्रोध नहीं है। तो ये शक्ति कहां से प्राप्त हुई? भगवान की सेवा से प्राप्त हुई। और परिणाम क्या हुआ कि फिर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से अम्बरीश महाराज की रक्षा की और दुर्वासा मुनि को अंततः उन्हीं के शरण में आना पड़ा अम्बरीश महाराज की प्रार्थना करने के लिए, माफी मांगने के लिए। तो ये तरीका है कि हमें भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को लगाना होगा, तभी ये काम वासना का ये जो स्थान है इससे पलायन हो जाएगा। तो भले ही हम जन्म से ही, बचपन से ही, हमें ऐसा प्रशिक्षण नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति जैसा श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी भी उम्र में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संपर्क में आकर कृष्ण भक्ति अनुशीलन प्रारंभ करता है तो वो धीरे धीरे इस काम वासना से मुक्त होकर धीरे धीरे कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? केवल कृष्ण प्रसाद, ये दोनों ही नहीं, ये सेवोन मुख्य जीवादौ, आदौ मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम टंग, यहां से प्रारंभ करना चाहिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, सब आता है, शुरुआत यहां से होती है।